से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम किस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सत गुरु बाबा ने बहुत ऊंची बात कही है। बाबा को कौन सी आत्माएं प्रिय लगती है? बाबा को कौन सी आत्माएं प्रिय लगती है? वैसे तो बाबा के सब प्रिय बच्चे हैं, लेकिन विशेष रूप से कौन से बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं? तो आज बाबा ने कहा है, जो ज्ञानी तो आत्माएं। एक होता है ज्ञान होना और दूसरा होता है ज्ञानी तो आत्मा बनना, जिसको उस दिन बाबा ने कहा, एक है नॉलेजेबल और दूसरा है नॉलेजफुल। तो नॉलेजेबल माना बहुत ज्ञान है, थियोरी में तो बहुत ज्ञान है, बाबा की एक एक मुरली की पॉइंट भी याद है, कौन सी अव्यक्त मुरली में कौन सी पॉइंट थी सब याद है, नोटबुक भरे हुए हैं, सब अव्यक्त वाणियां साकार वाणियां पूरा स्टॉक है, लेकिन वो तो सिर्फ थियरी है। पर प्रैक्टिकल में कितना है? तो बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा माना जिसकी सोच में, जिसकी वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, कर्म में, व्यवहार में, हर बात में वो ज्ञान अनुभव हो सबको, उसको ही कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। और वो अनुभव तब होगा, उसमें क्या ऐसी विशेषता होगी जो अनुभव होगा, वो गीता के अंदर भी आता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या है, तो भगवान ने बहुत सुंदर वाक्य है, ज्ञानी तो आत्मा उसको कहेंगे जो मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख ये जितने भी विरोधाभासी अनुभव है उन सब में समान रह सके। तो जो समान रह सकता है वो ही ज्ञानी तो आत्मा है। तो हम अपने आप से पूछे, हम कितने ज्ञानी तो आत्मा है? ज्ञान तो बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं ना, सुनाने में तो सब बहुत होशियार है, बहुत अच्छे अच्छे भाषण करते हैं, दुनिया में भी बहुत अच्छे अच्छे भाषण करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या नहीं भाषण करते हैं, लेकिन जीवन में कितना ज्ञान उतारा है वो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछना है। तो इसीलिए बाबा को वही प्रिय आत्माएं लगती है, और वही प्रिय आत्माएं बाबा की रुद्र माला में, विजयंती माला में पिरोई जाती है। बाकी तो बहुत बड़ी माला है, भक्त माला भी है, परंतु बाबा को ऐसे ज्ञानी तो आत्मा चाहिए जो बाबा सुनाते वो प्रैक्टिकल जीवन में हो। अगर प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है तो फिर उस ज्ञान का फायदा क्या? उससे तो दुनिया में भी कई बहुत अच्छे हैं जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है, लेकिन धारणाएं अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, धारणाएं अच्छी है। पर ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे? तो आज बाबा ने उसे बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है, और उसके लिए बाबा ने हमें कई स्मृतियां दिलाई है। कितनी एक लिस्ट बन सकती है स्मृतियों की, क्या क्या बाबा ने हमें याद दिलाया है। अगर वो स्मृति भी बुद्धि में आ जाए तो हमारी अवस्था कितनी अच्छी हो जाए। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर रूप से ये बातें सुनाई है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य, फिर मुरली के बाद भोग भी लगेगा। आज 5/3/2026 है। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, हेडिंग ही वो है, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है। इसलिए क्या होना है? इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो, कहलाते तो हम है ना मास्टर ज्ञान सागर है, परंतु मास्टर ज्ञान सागर किसको कहेंगे जो सचमुच बाप समान है, ज्ञानी तो आत्मा है। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? ये रोज बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, कल्याणकारी युग है, संगम युग है, पुरुषोत्तम युग है, और कितना जल्दी जल्दी बीत रहा है, दुनिया के नज़ारे भी हम देख रहे हैं, युग परिवर्तन हो रहा है, तो बाबा हमें कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। आता है याद, आत्मा ने परम धाम कब छोड़ा? 5000 साल पहले। बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। ये भी बाबा स्मृति दिला रहे हैं। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। देख रहे हैं ना परिस्थितियां कैसे दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लोगों के अंदर तो बहुत टेंशन है, पर बाबा के बच्चे जानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कल्याणकारी है, हमारे लिए नई दुनिया आई की आई। तो वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, ये प्रीत है जीते जी मर जाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन, सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है, सृष्टि का रचयिता एक है। कोई भी किसी की कोई भी रचना है तो उसका मेन रचयिता तो एक ही होगा, सृष्टि का भी रचयिता एक है, अनेक तो हो नहीं सकते हैं। इस सिद्धांत अनुसार अगर सृष्टि का रचयिता एक है तो इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कैसे कहला सकते हैं? बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तुम भी भगवान मैं भी भगवान, अरे भगवान तो रचयिता है, वो रचयिता तो एक है, सब कैसे हो सकते हैं? तो इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते, अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो, ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं जिसको सतयुग कहा जाता है, उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। हम सब कितना लायक बने हैं उसके लिए बाबा कहते हैं, हर एक अपने आप से पूछे, उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं शिव बाबा कहते हैं, पतित पावन मैं हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। पाप नाश करने का एक ही तरीका है अभी, योग अग्नि तपाना, योग रूपी याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, गॉड इज वन, ये भी कहते हैं। फिर यहां तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं, भगवान का टाइटल भी अपने ऊपर रख दिया ना, श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही हो सकता है, और श्री श्री तो हाँ बाबा कहते एक परमात्मा ही है, देवताओं को भी रचने वाला श्री श्री, देवताएं भी केवल श्री है, पर उनसे भी ऊंचा श्री श्री तो एक ही है। तो श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है, सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं दुख से, वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को ये नहीं कहा जा सकता है, मनुष्यों को दुख हरता सुख करता लिबरेटर पतित पावन ये सब टाइटल उनको नहीं दे सकते हैं। ये भी तुम बच्चे समझते हो कि ये है ही पतित दुनिया, सब पतित हैं, पावन दुनिया में है क्या, यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा, सब पावन है, यथा राजा रानी महाराजा महारानी तथा प्रजा। सत्युग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सत्युग में जो महाराजा महारानी है क्या होता है उनको, उनकी जब दो कलाएं कम होती है तो उनको महाराजा नहीं कहेंगे, राजा, उनको राजा कहेंगे। महाराजा माना एकदम 16 कला संपूर्ण, इसलिए त्रेता में श्री राम को राजा राम कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पर जब लक्ष्मी नारायण को कहते हैं तो महाराजा महारानी। तो त्रेता में फिर राजा बनते हैं क्योंकि दो कला कम हुई। तो बाबा कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में सत्युग में जो महाराजा महारानी है उनकी जब दो कलाएं कम होती है तो राजा रानी कहा जाता है। अब ये सब बातें डिटेल की है, नहीं तो एक सेकेंड में जीवन मुक्ति, बाबा को पहचाना खुद को पहचाना चक्र को समझा तो जीवन मुक्ति के लायक तो बन ही गए, तो एक सेकेंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो परंतु एक काम जरूर करो, ग्रस्त व्यवहार में भल रहो परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, बस यही बाबा कहते हैं पवित्र रहो ये अंतिम जन्म। अब वानप्रस्थ अवस्था है सबकी, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अर्थात शांति धाम, एक ही बात है, शांति धाम में आत्माएं सब वाणी से परे है, तो इसलिए अब सबको वाणी से परे जाना है, छोटे बड़े सबको, इसीलिए बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है, वहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्म के अंदर अंडे मिसल रहने वाली आत्माएं, लेकिन आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, कोई ओवल शेप नहीं है, आत्मा तो स्टार है, चमकने वाली है, आत्मा तो स्टार है। तो बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं, जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। रोल तो कितने बजाते हैं लेकिन आइडेंटिटी तो एक ही होगी ना, एक ही एक्टर कितने रोल बजाता है, तो आत्मा तो वही है परंतु कितने शरीर लेती है तो अलग अलग रोल हो जाते हैं, उनके अभिनय अलग हो जाते हैं, आइडेंटिटी तो एक ही है, उनका जो अस्तित्व है जो व्यक्तित्व है वो आत्मा तो उसका तो एक ही है। तो बाबा कहते हैं ये भी बेहद का नाटक है, आत्माएं इस सृष्टि रूपी पांच तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती है, शुरू से लेकर। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सब एक्टर्स हैं। शिव बाबा तो मेन एक्टर है ना, प्रिंसिपल एक्टर है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है ना पाठ बजाने लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगर रहती है, परम धाम में तो आत्माएं ड्रेस के बिना है। इसलिए बाबा कहते हैं घर में तो आत्माएं सब शरीर के बिगर रहती है। फिर जब पांच तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं, जितने शरीर आत्मा धारण करती है उतने उनके नाम पड़ते हैं। तो 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम तो एक ही है, आत्मा वही है, लेकिन देख भर कितनी फिल्मों में पार्ट बजाता एक्टर, तो हर फिल्म में उसका नाम तो अलग ही होगा ना। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं शिव बाबा कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है, जो असली नाम है, जो रियल नाम है, वो तो केवल एक ही शिव है। भल पुराने शरीर में आता हूँ, ब्रह्मा का पुराना शरीर है उसमें आता हूँ, इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम भी है, फिर इनका अव्यक्त नाम भी पड़ता है। तो व्यक्त नाम क्या था, दादा लेखराज, बाबा लखीराज बाबू, बाबा को लखीराज बाबू भी कहते थे। लखीराज बाबू से हैदराबाद सिंध में बाबा बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे ना, तो इसीलिए बाबा को लखीराज बाबू कहते थे, पर लौकिक नाम तो उनका लेखराज था। तो बाबा कहते हैं लौकिक नाम भी था, व्यक्त नाम भी था, फिर अव्यक्त नाम पड़ा। अव्यक्त नाम क्या दिया शिव बाबा ने उनको, प्रजा पिता ब्रह्मा, ये अव्यक्त नाम पड़ा। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। अभी भी दुनिया में कोई एक धर्म में है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है और दूसरे धर्म में चला जाता है तो उसका नाम तो बदल जाता है ना। तो हम भी पहले क्या थे, शूद्र थे, तो जैसे धर्म परिवर्तन हो गया अर्थात ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बने तो द्विज बन गए। तो पहले तो बाबा ने बहुत नाम बदली किए, लेकिन फिर बाबा ने देखा कि भागंती हो गए तो बाबा ने नाम बदलना छोड़ दिया। इसीलिए बाबा अभी नहीं, कई कहते ना हमारा नाम क्यों नहीं बदलते, लेकिन हाँ नाम अच्छे हैं तो बाबा क्यों बदलेगा। पर किसका नाम कुछ ऐसा होता है ना तो बाबा नाम बदल देते थे, दादी जी भी बदल देती थी। हाँ विदेशों में एक साउथ कोरिया देश है, वहां पर उनके जो नाम है ना बड़े विचित्र है, समझ में नहीं आते, बोल भी नहीं पाते। तो दादी जानकी ने सबके नाम बदल दिए थे, सबके नाम। अभी उनसे पूछो ना साउथ कोरिया के भाई बहनों से, वो सब अपना जो बाबा ने नाम रखा, दादी ने नाम रखा, वही सुनाते। और कोई भी फिर ब्राह्मण बनता है तो वो कहता मेरा भी नाम बदलो, तो इसीलिए बाबा ने उनका नाम बदला है। लेकिन जो अच्छे नाम है क्यों बदलेंगे, लेकिन हाँ किसका नाम कांता है तो बाबा उसका नाम बदल देते थे, शांता नाम रखते थे। कांता तो सतयुग में जो दासी है उसको कहते हैं। किसका नाम माया था तो बाबा ने उसका नाम गीता रख दिया, हाँ माया ने। किसका नाम चंचल था तो बाबा ने उसका नाम अचल रख दिया। किसका नाम फकीर चंद था तो बाबा ने उसका नाम अमीर चंद रख दिया, हाँ फकीर चंद ने। तो ऐसे नाम बदलते थे अगर वो सही नाम नहीं लगता था। परंतु आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर नाम भी रखते हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढ निकालते हैं, और नए नए नाम पता भी नहीं, याद पता ही नहीं, तो पूछते हैं अच्छा इसका मतलब क्या है, तो वो मतलब भी बताते हैं कि इसका नाम अर्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं तो धर्म दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है, तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते भी हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, केयर ऑफ ब्रह्मा, पत्र भी लिखते थे बाबा को, शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पवित्र पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं, 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए, बिना ब्राह्मणों के स्थापना कैसे होगी देवता धर्म की, ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए उसके लिए तो ब्रह्मा चाहिए, पर ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, प्रवेश करते हैं जिस माध्यम में उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, उनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं तो वो मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाते हैं, ऐसे ही नई रचना होती है सतयुग की। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं, एडॉप्ट करना माना कोई जन्म नहीं देते हैं, एडॉप्ट करते हैं उसके लिए, बस कहते हैं तुम बच्चे मेरे हो, बस लौकिक में भी एडॉप्ट करते ना किसी को, उसका वो कुक की संतान तो नहीं है पर एडॉप्ट किया किसको और बस लिखा पढ़ी कर ली कि ये मेरा बच्चा है। तो बाबा कहते हैं तो कैसे अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो, शिव बाबा के बच्चे हो तो ही फिर ब्रह्मा द्वारा पोतरे हो जाते हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, अनादि बच्चे हैं शिव बाबा के, फिर संगम पर हम ब्रह्मा द्वारा पैदा होते हैं तो हम शिव बाबा के पोतरे हो गए। पिता तो एक है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी है ये सब बातें, हाँ वो नहीं जानते कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारियां, फिर हम बताते नहीं आप भी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों, क्योंकि ब्रह्मा की संतान भी तो सारी दुनिया है। तो मनुष्यों को पता थोड़ी है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नहीं सिराते रहते हैं, कोई परम धाम से ही कोई देवता आए, परंतु ब्राह्मण ही यहाँ चेंज हो जाते हैं और फिर घर जाकर देवता बन के आते हैं। तो ऐसे नहीं कि नहीं सिराते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं, हाँ ऐसे भी नहीं कि दुनिया खत्म हो जाती है और फिर सब चले गए और कोई नहीं बचा और फिर नए सिर परम धाम से आएंगे, क्योंकि नए सिर आने के लिए भी कोई तो चाहिए जो जन्म देवे उनको, इसलिए सब तो खत्म होते ही नहीं है, कुछ तो बचते हैं। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया, पत्ते पर श्री कृष्ण सागर में आया। अब ये तो सब कहानियां बनाई हुई है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा तो अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है, कभी नहीं खत्म होता पार्ट, आत्मा में पार्ट कभी घिसता भी नहीं है, खत्म तो क्या घिसता भी नहीं है। दुनिया में जो भी रील्स होते हैं ना, फिल्मों के भी रील्स, गीतों के भी जो भी रील्स है, वो चलते 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 घिस भी जाते हैं, है ना, लेकिन आत्मा का रील तो कभी नहीं घिसता, खत्म तो होता ही नहीं है। उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है, ऐसे नहीं अगले कल्प में सतयुग में कोई राम सीता आ जाएंगे, नहीं, वो फिर भी त्रेता में ही आएंगे, लक्ष्मी नारायण सतयुग में आएंगे, वैसे ही होता है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। सचमुच अगर ये जो बाबा की इतनी गहरी बात अच्छी तरह से बुद्धि में आ जाए तो कभी भी हमारी स्थिति ऊपर नीचे न हो, कभी न हो। तो हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। अब ये बाबा ने क्यों कहा है उसमें भी एक राज है। भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। ये गीता के अंदर भी अक्षर है, जो जो जिस जिस भावना से मुझे भजता है मैं उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ। बहुत इसका गहरा राज है, जो जो जिस जिसकी भक्ति करता है उसका मैं भावना का भाड़ा देता हूँ, वैसा ही साक्षात्कार करा देता हूँ। तो बाबा कहते वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वो शुभ भावना पूरी करता हूँ। फिर गीता में ये भी आता है, हाँ, जो जो जिस भावना से मुझे बचता है मैं उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ, लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ, मैं नहीं मिलता हूँ। ये तो बाबा ने साफ कहा, वो गीता में भी, तो मैं नहीं मिलता हूँ, तो जो मुझे भजते हैं वो मुझे पाते हैं, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनकी वो शुभ भावना पूरी करता हूँ। ये भी ड्रामा में नोंद है कि उनको वही साक्षात्कार करो। अभी कोई है ही गणेश का भक्त, अब उनको गणेश का भक्त है और उनको हनुमान का साक्षात्कार हो जाए, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो गणेश को ही मानता हूँ। कोई हनुमान का भक्त है उसको गणेश का हो जाए तो वो मानेगा नहीं, है ना। तो जो जो जिस धर्म का भी है उसको वैसा ही साक्षात्कार होता है। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर इससे क्या समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं इससे, इससे फिर ये समझ लेते हैं कि भगवान सब में है। फिर चाहे हनुमान हो, चाहे गणेश हो, चाहे कोई देवी हो, कोई देवता हो, चाहे फिर तो कोई भी नाम लेते तो सब भगवान के ही रूप है, तो सर्वव्यापी है ईश्वर। फिर सब में, फिर इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है, मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल्स में मीरा शिरोमणि गाई जाती है भक्ति में। भक्त माला तो अलग है, फिर रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। रुद्रमाला तो परमधाम में जब आत्माएं जाएगी तो वो रुद्रमाला की अपने पिरोएंगे। ज्ञान की माला तो अलग है, इस समय ब्राह्मणों की माला उस रूप से, तो ये ज्ञान माला है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं है। रुंड माला यानी वैजंती माला पूजी जाती है, वैजंती माला विष्णु की माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर है मेरु डबल बीड, फिर है बच्चे जो राज गद्दी पर बैठते हैं, तो वैजंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का तो सिर्फ गायन होता है। कितने भक्त हो गए हैं, भारत में भी बहुत सारे भक्त हो गए, हर धर्म में सेंट्स हो गए हैं, तो वो तो उनका गायन होता है पर पूजन नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। ये है रुद्र माला जो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं हो, तुम कौन हो, ज्ञानी हो, तुम ज्ञानी हो। तो बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, माला भी तुम्हारी पूजी जाती है, आठ रत्नों का भी पूजन होता है। आठ की भी माला होती है, छोटी छोटी माला होती है आठ की, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी भी बनाकर पहनते हैं क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अंगूठी भी 9 रत्नों की होती है, 8 रत्न बीच में हीरा। तो क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पास विद ऑनर होते हैं, तो उनका गायन है, नौवा दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं नौ रत्न। ये है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे, या बस फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में तो जा न सके, यहाँ तो सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है, वो है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ दुख की तो बात ही नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम, वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी सुख धाम में, अब तो कुछ नहीं है, इसीलिए इसको नरक और उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, वहाँ से आती है यहाँ पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं, अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, और फिर शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। तो बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य को देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। हम किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने, सुख धाम का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारा है ये संगम युग, तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सारे कल्प में एक ही बार इस समय कलयुग के अंत में सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए, ये है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है, सबका कल्याण कैसे होना है? सबका कल्याण, सबको रावण के जेल से छुड़ाते हैं। इस समय सब रावण के जेल में पड़े हैं, सबको रावण के जेल से छुड़ाते हैं, ये है सबका कल्याण करना। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है, यहाँ सभी दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है, परंतु कैसे जाना है? सीधा नहीं जा सकते यहाँ से सुख धाम। सुख धाम तो जाना है, पर पहले शांति धाम में जाना है। सब न्यूट्रल हो जाएगी आत्माएं, जीरो पर आ जाएगी, सब कुछ भूल जाएगा, और फिर सुख धाम में आना है। लेकिन जो इस संगम युग पर पुरुषार्थ किया, वो आत्मा प्रारब्ध तो ले ही जाएगी, उस अनुसार संस्कार ही हमारे बनते हैं, फिर सतयुग में आते हैं, पर याद कुछ भी नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं सुख धाम जाना है, पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं, तो बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। याद तो किसी को भी नहीं होगा कि 5000 साल पहले हमने अपना धाम परम धाम छोड़ा था। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। डबल विदेशी भी तो आदि भारतवासी है ना, सभी यही कहते हैं हम आदि भारतवासी हैं। तो सब जो भी आदि भारतवासी है, सब ने 84 जन्म लिए हैं, अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। सबकी वान परस्त अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है, क्या गायन है? ज्ञान का सागर व रुद्र, वो एक ही है ना? उसको रुद्र कहते हैं। ये है शिव ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र कहो या शिव कहो, वादे किए, ये है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम तो भक्तों ने रख दिया है, रुद्र नाम भक्तों ने रखा है, असली नाम तो उनका शिव है, उनका असल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा भी एक ही है, अनेक ब्रह्मा तो नहीं हो सकते ना, आज इस कल्प में इसमें आए, कल दूसरे कल्प में आए, दूसरे तन में आए, फिर उसको ब्रह्मा कहा, तो कितने ब्रह्मा तो नहीं होंगे। ब्रह्मा भी एक ही है, ब्रह्मा भी एक ही है। ये पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है, तो जब पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। हाँ, बाबा कहते हैं यही पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है, जिसको फरिश्ता कहेंगे। तो पावन बनना माना फरिश्ता बनना, तो फरिश्ता बन जाता है जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। साकार मुरलियों में भी ब्रह्मा बाबा को अपना वो फरिश्ता स्वरूप बहुत याद था, मैं ऐसा संपूर्ण बन के फरिश्ता बनूंगा। तो जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं ये वो दूसरा ब्रह्मा नहीं है, यही ब्रह्मा है, यही ब्रह्मा है जो फिर फरिश्ता बनता है, दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक ही है। ये व्यक्त है और वो अव्यक्त है। ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। अभी भी कईयों को होता है ना ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार, वो सूक्ष्म वतन में देखेंगे, वहां हड्डी आदि तो होती नहीं, हड्डी मांस का शरीर नहीं है, वो तो लाइट का शरीर है, प्रकाश का शरीर है। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है वो तो भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। आत्मा को शरीर नहीं मिला तो भटकती रहती है, परंतु ब्रह्मा बाबा की आत्मा को भी साकार शरीर नहीं है, पर वो तो फरिश्ता बन गई, सूक्ष्म वतन वासी बन गई। तो बाबा कहते हैं तो वो जिसको शरीर नहीं मिलता भटकती है, तो कई आत्मा देव कई शरीर में प्रवेश कर लेगी, जिसके साथ उसका कर्मों का हिसाब किताब है, जब तक उसको अपना शरीर मिले। उनको भूत कहते हैं, जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है कोई बुरी होती है, कई तो बहुत अच्छी आत्मा होती है और कोई तो बुरी होती है। तो बाप हरेक बात की समझानी देते हैं, वो ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। अब ज्ञान का सागर है तो ज्ञान तो देंगे ना, सबको समझाएंगे ना। एक सेकंड में जीवन मुक्ति है, अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिले। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। वो समझते हैं भारत का योग ये था, राजयोग ये भारत का योग, असली योग ये था जो 5000 साल पहले भगवान ने सिखाया था। गीता में आता है, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो भगवान ने राजयोग सिखाया था। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं भारत का योग ये था, परंतु वो सन्यासियों का हठ योग है। अभी तो समझते हैं कि वो ही राजयोग है, पर बाबा कहते हैं वो तो हठ योग है जो सन्यासी सिखाते हैं, ये तो बिल्कुल ही सहज है। राजयोग कोई कठिन नहीं है, हठ योग तो बहुत कठिन है। योग माना याद, उनका है हठ योग, ये है सहज राजयोग। तो बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, तो सहज राजयोग क्या है, बस अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रूप से याद करो, ये है सहज राजयोग। मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है, तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापिस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में फिर और धर्म वाले भी आते हैं, हम ब्राह्मण वंशी से फिर सूर्य वंशी बनेंगे, चंद्र वंशी बनेंगे, फिर हम जैसे वैश्य वंशी बनेंगे, फिर और धर्म वाले भी आते रहेंगे। फिर इसी बीच में और धर्म वाले भी आते हैं, 84 जन्म तो तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे, और धर्म वाले शांति धाम में होंगे और तुम सुख धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं होते हैं, जैसे भारत में ये वर्ण है वो और धर्मों में नहीं होते हैं, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है तो फिर बाबा उनको दूसरा सहज बात करके बताते हैं। अब कहते बाबा इतना ज्ञान तो मुझे समझ में नहीं आता है, तो बाबा कहते ठीक है नहीं समझ में आता है तो उनको फिर बाबा कहते अच्छा बस मुझे याद करो और ज्यादा में मत जाओ, डिटेल में मत जाओ, नहीं समझ में आता है तो मुझे याद करो, वो तो सहज है। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि ये मिल्कियत मेरे पिता की है जो मुझे मिलनी है, हाँ बच्चे को पता पड़ जाता है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है, उस समय जब बाबा ने मुरली चलाई थी तब बेटी को नहीं मिलता था, आजकल तो सबको मिलता है, बेटा हो या बेटी, बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, शिव बाबा के बेटा बेटी नहीं है, पर हाँ ब्रह्मा का बेटा बेटी जरूर है, पर शिव बाबा के सब बच्चे हैं, बेटे हैं, क्योंकि सबको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है, सबको सिखाना है। अब ये सबको सिखाना है कि शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे, आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे, कैसे निकलेगी? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। ये पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पतित शरीर यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बनकर जाएगी। सब कैसे जाएंगे? बाबा मिसाल देते हैं मच्छरों सदृश जाएंगे। मच्छरों सदृश जाएंगे तो बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे। अभी भी जो लड़ाई चल रही है ना इजराइल और ईरान की, बहुत मनुष्य मर रहे हैं, बहुत, हाँ कितना अंधाधुंध बमबारी चल रही है अभी भी, तो बहुत डर बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल की गैस की सब कीमतें बढ़ती जाएगी, सब कुछ बढ़ता जाएगा, सब कुछ महंगा होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। अभी भी यही प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है, प्रश्न चिन्ह, तीसरा विश्व युद्ध है तो वो प्रश्न चिन्ह लगा करके वही बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी थोड़े जाकर रहेंगे, राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी हैं, एक गायन है, घटई में सूर्य, घटई में चंद्रमा, घटई में 9 लख तारे, तो सब कुछ आपके अंदर ही है, घटई में सूर्य, घटई में मन अंदर ही है, सूर्य भी चंद्र भी 9 लख तारे, तो 9 लाख सितारों का वर्णन आता है। तो बाबा कहते इस पर गीत भी है, 9 लख तारे यानी 9 लाख प्रजा होगी सतयुग के आदि में। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है, अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं सबका गाइड बन सबको ले जाने, ये भगवान का ही काम है, सबका गाइड बन उनको घर ले जाते हैं। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरा, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। याद में रहते हैं निरंतर तो सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, हाँ बाबा आप साथ में हो चलो, भले ये दो हाथ है लेकिन हजारों हाथ वाला साथ में है तो वो कार्य मुश्किल भी सहज हो जाता है। तो मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में ना मन से डांस करते रहेंगे। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। खाली कारण नहीं बताओ, ये कारण वो कारण, तो निवारण क्या है, वो निवारण भी साथ में होना चाहिए। तो किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत श्रीमत प्रमाण हर कदम हो, श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत है तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी बनेंगे। इन सब का आपस में संबंध है। श्रीमत प्रमाण हर कदम तो निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत है तो यथार्थ निर्णय देंगे, और निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है, हमारी विजय हुई पड़ी है, इसीलिए निश्चिंत है। भगवान हमारे साथ है इसीलिए फिकर काहे की है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज तो डबल विदेशी तो बहुत है ही है, लेकिन शांति वन से भी बहुत आ गए हैं। शांति वन से जो आए हैं हाथ उठाओ भाई, इतने सारे आ गए हैं, देखो शांति वन से सब हाथ उठा रहे हैं। तो आप सबका नाश्ता, दिन का भोजन, ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है, और आज भी शायद मजदूर कम आएंगे, बर्तन धुलाई करने होंगे। तो कल जिन भाई बहनों ने अपने यूज किए हुए बर्तन धुलाई किए, उन सभी को दिल से धन्यवाद। तो कल तो आपने अपने बर्तन धुलाई किए, लेकिन आज भी करनी है, आज भी मजदूर नहीं आएंगे, तो धुलाई किए हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद। आज भी उनके सहयोग की आवश्यकता है, आज भी आपको अपने जूठे बर्तन खुद ही धुलाई करने हैं, तो इसलिए ऊपर के डाइनिंग हॉल में ही जाएंगे। ओके, सो आई विल अनाउंस टुडेज प्रोग्राम फॉर डबल फॉरेनर्स एंड देन शशि बेन विल मेक मोर अनाउंसमेंट्स। टुडेज प्रोग्राम दिस मॉर्निंग ब्रदर चार्ली इज गोइंग टू मीट ऑल दोज फ्रॉम श्रीलंका इन ट्रेनिंग सेंटर रूम नंबर 10 ऑफ ज्ञान सरोवर। चार्ली भाई विल मीट ऑल दोज फ्रॉम श्रीलंका इन ट्रेनिंग सेंटर रूम नंबर 10 एट 9:15। सो प्लीज कैच द 9 o'clock बस इफ यू आर फ्रॉम श्रीलंका सिटिंग हियर। टू गो टू ट्रेनिंग सेंटर रूम नंबर 10 ऑफ ज्ञान सरोवर, चार्ली भाई विल मीट यू। 9:30 AM सुदेश दीदी विल मीट ऑल दोज फ्रॉम एशिया पैसिफिक इन द मेडिटेशन हॉल। ऑल दोज फ्रॉम एशिया पैसिफिक, सुदेश दीदी विल मीट एट 9:30 इन द मेडिटेशन हॉल। देन 9:30 अगेन पर्सनल मीटिंग विद सिस्टर भावना ऑफ न्यूजीलैंड इज ओपन टू एनीवन, इनिशिएटिव ऑफ केयर एंड वेलबींग टीम इन दादीज कॉटेज। Then today there are today's green day, so green day means pathways to a golden future. So there are many venues where you will decide where to go. 10 to 10:30 visual green angel meditations, 10 to 10:30 visual green angel meditations. Okay, so this is green day for everyone. 10:30 to 11 presentation and updates by Brother Golo with slides. All this is in the Harmony Hall. So from 10 o'clock onwards, you have to go to the Harmony Hall. 10 to 10:30 is visual green angel meditations, and then 10:30 to 11 presentation and updates by Brother Golo with slides. Then 11:15 to 12:30 interview by Sister Philippa of Sister Jayanti. Sister Jayanti is coming. So interview by Philippa of Sister Jayanti, Sister Sonia and Brother Golo in the Harmony Hall of Gyan Sarovar. So 10 to 12:20 there will be this pathways to a golden future green day. And then 4 o'clock, Harmony in Dadi Janki Park. Harmony in Dadi Janki Park means 4 o'clock, 4 to 4:45, fruit party and welcome, introduction to groups by Brother Golo and Sister Sonia. Choose one group from 4:45 to 5:25. Choose another group from 5:30 to 6:15. And there are four groups, 4:45 to 5:30. Group one is Art and Embroidery by Brother Golo and Sister Rebecca Gazebo. And group two, Movement, Sister Ursula and Sister Judy from the stage. Group three, Meditation, Sister Valerie and Sister Philippa in the Meditation Hall. And group four, Walk, by Sister Anita and Sister Susanna. Meeting room, meeting point, entry to Dadi Janki Park, you will meet there. And then group 5, sharing Sister Caroline and Sister Natalie round tower. And then 5:30 to 6:15, same as above, choose a second workshop to attend. And 6:30 to 7:30, peace concert and outdoor meditation by Brother David and party in Dadi Janki Park. And 8:30, Sudesh Didi will meet all those from Russia, CIS and Baltic region in Dadi's cottage upstairs. Then 8:30 to 9:15, this may not be for you because you will come back. There's good night meditation with Sister Meera in the meditation hall. But that's for those who are in Gyan Sarovar. Om Shanti, Om Shanti. Double foreigners directions, please, double foreigners note. Those who newly arrived yesterday should submit their government C form to the deposit office after breakfast. Those who have shifted from Manmohini 1 need to ensure the office has your correct room number. Please deposit your valuables to keep them secure. And secondly, those who have not yet collected with double foreigner badge are requested to come to deposit office between 9 and 11:30 a.m. today to get your double foreigner's badge. Because security staff will ask to see your badge whenever you enter Baba's campuses. And the badge is important for Bap Dada Milan. So don't lose your badge, please. Please keep it on all the time when you are in these campuses. Om Shanti.
ओम शांति. सतगुरुवार दिन की बहुत बहुत खुशी के साथ बधाइयां. और सतगुरुवार दिन हम सबका बहुत ही प्यारा दिवस है. बाबा के साथ का अनुभव, बाबा से हम सब मिलकर के बहुत प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं. तो आज भी हम सब वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे. बाबा को अच्छा लगता है जब सब बच्चे वतन में जाते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, तो बाबा को भी इतना प्यार आता है. सब बच्चों को प्यार से भरपूर कर देते हैं, वरदानों से भरपूर कर देते हैं. तो आज वतन में कौन चलेगा भोग लगाने के लिए, हाथ खड़ा करो. अच्छा, सब जाएंगे ना बाबा के पास. बाबा कितना आप सबको प्यार करेंगे, वरदान देंगे. भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे, तो वो भोग के बाद बाबा का संदेश सुनाया जाएगा. और संदेश के बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की होगी. उस साइड में ये जो खड़ा है स्टैंड, इसके तरफ. और देयर विल बी 2 लाइन्स फॉर डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. डबल फॉरेन ब्रदर्स विल कम टू दिस साइड and sisters will come to near this camera, and Sister Mani will give nectar to all the double foreign sisters and brothers. And baki do line hongi anya behno ki us taraf, bhaiyon ki taraf ek line. There will be 2 lines for double foreign sisters and brother for nectar. Sister Mani, after Baba's message, she will come on the stage to give nectar. और बाकी सबकी जो होगी, अन्य बहनों की 2 लाइनें होंगी अमृत पीने के लिए. और जो भी भाई बहने नीचे से आए, हाथ खड़ा करें. पहले भी आपने हाथ खड़ा किया और आप सबको बताया गया कि आप सबका नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है, क्योंकि नीचे कुछ कारोबार चल रहा है, वहां खड़े होने की बैठने की भी जगह नहीं है। फिर से रिमाइंड करा रहे हैं कि जैसा कि आपको बताया कि होली के कारण लेबर कम आते हैं, तो आज भी सबको नाश्ते के बाद अपने बर्तन इतने अच्छी तरह से साफ करना है जैसे कि बिल्कुल कांच की तरह। ऐसा नहीं पानी डाल करके धीरे से रख दो, उसको बहुत अच्छी तरह से साफ करना है ताकि आप उसको फिर यूज कर सके और भी यूज कर सके। और साथ साथ फिर से बता रहे हैं कि दोज डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर लीविंग फॉर देयर कंट्री, सो दे हैव टू कलेक्ट टोली फॉर देयर रिटर्न जर्नी वन डे बिफोर देयर डिपार्चर। दोज व्हेन यू लीव फॉर योर प्लेस कंट्री यू हैव टू कलेक्ट टोली फॉर योर रिटर्न जर्नी वन डे बिफोर योर डिपार्चर। ओके, इज एनीवन इज लीविंग टुडे? वन और टू। एंड टुमारो? नो। Now the new arrivals, and you are already sitting with Baba. Some are already from the previous group are sitting with Baba. They are getting lot of benefit from Baba. Baba is here to take care of everyone. Okay, abhi hum sab chalte. Today's program will be put on in the notice board just opposite the history hall. Today's program will be put on notice board just opposite to the history hall. You can read from there. Also, you have already heard, but you can read it. I'm repeating it again. Bhog ke baad 5 line mein amrit hoga. Ek line bhaiyon ki. There will be 2 lines for double foreign brothers and sisters. Brothers will come to in the middle of this side. And sisters will come to near this camera side. Baki do line hongi anne sab behno ki. Abhi hum sab chalte hain Baba ke paas. Baba ko bhog swikar karayenge. Om Shanti.
Thank you. पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति
somebody। अमृत पीते हैं, तेरी आत्मा अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
माता ही बैठी रहो, तब बैठ जाए।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ, जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा के सामने दो ट्रांसपेरेंट कमरे दिखाई दे रहे थे। बाबा बहुत देर तक उन ट्रांसपेरेंट कमरों की ओर दिखाई देख रहे थे। एक में क्या देखा कि लाइट की किरणें आपस में एक दो को काट रही हैं एक कमरे में, और उसी कमरे में दूसरी तरफ लाइट की किरणें ऊपर नीचे बहुत तूफान की तरह ऊपर नीचे जा रही थी। उसी कमरे में तीसरी तरफ क्या देखती हूँ कि वो लाइट की किरणें गोल गोल घूमते जा रहे थे, और चौथी तरफ क्या देख रही हूँ कि वहाँ पर वो लाइट की किरणें कभी जग रही हैं कभी बुझ रही हैं। फिर दूसरे ट्रांसपेरेंट रूम की ओर क्या देख रही थी, कुछ लाइट की किरणें थी धीमी धीमी थी, कुछ लाइट थोड़ी ज्यादा थी और कुछ किस्म अलग अलग प्रकार से थी, और बाबा काफी देर उन दोनों को देख रहे थे। और जब बाबा ने मेरी ओर देखा तो बाबा ने कुछ देर कोई बात नहीं की, बिल्कुल साइलेंस में थे। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा, बच्ची आज बाबा क्या देख रहे हैं? बाबा ने कहा, विश्व की हालत क्या है, मानसिक स्थिति दिन प्रतिदिन कंफ्यूजन क्यों ले जा रही है, और शरीर की बीमारियां मनुष्य को कई प्रकार के दुख और दर्द के अनुभव करा रहे हैं, प्रकृति अपना खेल विकराल रूप में दिखा रही है, और विश्व के अंदर बड़ी ताकतें एक दूसरे को भयानक रूप से डरा रही हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों को देखते हैं, आज बाबा विशेष बच्चों के आंतरिक स्थिति को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों की जो आंतरिक स्थिति है, कभी तो हल्की कभी मजबूत कभी थोड़ा ऊंचा कभी नीचे की ओर जाती हैं। और बाबा फिर शांत हो गए। बाबा ने कहा कि बाबा ने पहले से ही बच्चों को बता दिया है कि ऐसी परिस्थिति में बच्चों का बाप का साथ तो है ही है, लेकिन बच्चों को अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो बाबा ने कहा, कई बच्चे अभी भी संकल्पों के उलझन में अपने आप को उलझा देते हैं,
बाबा ने पहले से ही बच्चों को कहा है कि बाबा का बच्चों के साथ लास्ट तक साथ भी है, सहयोग भी है, लेकिन बच्चे इस बात को भूल जाते हैं, जिस कारण से अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसकी सीट से उतर करके और वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे बाबा आज बच्चों के स्वरूप को देख रहे थे, ऐसे बच्चों को भी अपने ऊपर अटेंशन देना है और अपने को हल्का करना है और अपनी चेकिंग करते हुए अपने आप को भरपूर करने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने क्या किया, जैसे बाबा के सामने सब बच्चे थे, आज बाबा का रूप थोड़ा ऑफिशियल दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा कि बाबा समय प्रति समय बच्चों को अव्यक्त इशारे और बच्चों को साथ में कई प्रकार के अनुभव और आगे बढ़ने के लिए मदद करते रहते हैं, लेकिन बच्चे उसको अभी तक भी कभी कैच करते हैं, कभी नहीं करते हैं। फिर बाबा सब बच्चों को दृष्टि से बहुत शक्ति तो दे रहे थे, बाबा ने कहा अभी बच्चों को शक्ति चाहिए। तो शक्ति के साथ साथ बाबा ने चार फूल बच्चों के सामने रखे, एक फूल था ऊपर और तीन फूल नीचे थे। तो बाबा ने कहा इन फूलों को ध्यान से देखो। तो जो पहला फूल था उसमें लिखा हुआ था शीतला स्वरूप भव। जो बीच का फूल था उसमें लिखा हुआ था साइलेंस की शक्ति, और तीसरे फूल के ऊपर लिखा हुआ था ज्वाला स्वरूप स्थिति। फिर जो ऊपर का टॉप फ्लावर था उसके ऊपर लिखा हुआ था सिद्धि स्वरूप विजयी भाव। तो बाबा ने कहा अभी समय प्रमाण बच्चों को सबसे पहले साइलेंस शक्ति का ज्यादा से ज्यादा अनुभव और प्रयोग करना है, और विश्व के सामने शीतला स्वरूप और स्वयं के प्रति बच्चों को ज्वाला स्वरूप बनना है। फिर तब बच्चे जाकर के ऐसा अनुभव करेंगे कि हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। बाबा ने बच्चों को पहले से ही वरदान दे दिया है विजयी भाव, लेकिन उस वरदान को बच्चे भूल जाते हैं। अब समय है कि इन स्वरूपों का अभ्यास करके सिद्धि स्वरूप और विजयी बने, तब जाकर के अपना जो विश्व परिवर्तन का कार्य है उसको सहज करेंगे, तभी प्रत्यक्षता का नारा बुलंद होगा। फिर ऐसे बाबा सबको बहुत प्यार कर रहे थे, प्यार के साथ साथ फिर बाबा ने सब बच्चों को वो चार प्रकार के फूल दिए, हर फूल में एक लाइट थी और उस लाइट के ऊपर ये सब लिखा हुआ था साइलेंस की शक्ति, शीतला स्वरूप, ज्वाला स्वरूप और सिद्धि, ऊपर के फूल में सिद्धि स्वरूप विजयी भव। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया। फिर भोग के बाद मैंने बाबा को बताया, सबने भोग के लिए अपने संदेश भेजे हैं। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए कहा कि बच्चे अभी तक बचपन के खेल करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बाबा से ये बात करो, बाबा से बात करो। बाबा ने कहा अभी बच्चों को बजाय संदेश के बाबा के सामने बैठ करके अपने जो भी संकल्प हैं बाबा